नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। लोक निर्माण विभाग ने योजनाओं से संबंधित निविदाओं के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया। अब निविदाओं पर एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी लागू होगी। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत रेल के यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 22 मामले दर्ज किए और 47 स्थानों पर तलाशी ली। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने योजनाओं से संबंधित निविदाओं के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ विभागों में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद यह बदलाव किया गया है। प्रस्तुत है रिपोर्टिंग डेस्क की ये रिपोर्ट।
लोक निर्माण विभाग ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिससे अयोग्य ठेकेदारों और कंपनियों पर रोक लगाई जा सकेगी। आगामी सभी निविदाओं में एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी एपीजी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, जो असामान्य रूप से कम बोली लगाने वालों पर लागू होगा। लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उसे कुछ ठेकेदारों द्वारा मात्र निविदाएं हासिल करने के लिए निविदाओं में असामान्य दरों का उल्लेख करने की जानकारी मिली है। ये दर विभाग द्वारा तय की गई अनुमानित लागत से बहुत नीचे होती हैं। विभाग ने बताया कि ऐसी कंपनियां परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पाती, साथ ही उनकी कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस बारे में कहा कि इस निर्णय से आर्थिक सुरक्षा के साथ ही ठेकेदार की कार्य प्रगति और जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता के पैसे को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक कार्यों में उपयोग करना है।
दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाना है। दिल्ली की विभिन्न एजेंसियां 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री ने जनता से स्वच्छता जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। सरकार ने इस अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम को 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। प्रस्तुत है रिपोर्टिंग डेस्क की ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान के 1-2 दिन विद्यालयों, अस्पतालों और कार्यालयों में लंबित सफाई कार्यों को निपटाने पर केंद्रित होंगे। हर शनिवार और रविवार को अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14, 21 और 28 अगस्त को यमुना घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, वहीं 29 और 31 अगस्त को रिंग रोड की सफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम करेंगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि अभियान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एजेंसी को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA की ओर से 25 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाली एजेंसी को 15 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली एजेंसी को 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ा रही है।
दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज निगम के सभी 12 जोन के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचों, स्वच्छता, नालों की सफाई और जलभराव की समस्या से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, जोन स्तर की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों के साथ सामूहिक रणनीति बनाना है। बैठक में श्रीमती सत्या शर्मा ने सभी जोन में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का अलग करना, सड़कों और नालियों की नियमित सफाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं, हरियाली सौंदर्यीकरण और हरित अपशिष्ट से खाद निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने केंद्र सरकार से बदरपुर गांव में बंद हो चुके एनटीपीसी पावर हाउस की सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्षेत्रवासियों के लिए कॉलेज, अस्पताल और स्टेडियम निर्माण का अनुरोध किया। एक रिपोर्ट।
श्री भिदुड़ी ने कहा कि क्षेत्र के किसानों ने ये जमीन एनटीपीसी पावर हाउस के लिए सरकार को दी थी, लेकिन अब ये पावर हाउस बंद हो चुका है तो खाली जमीन पर क्षेत्रीय निवासियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्री भिदुड़ी ने लोकसभा में ये मामला उठाते हुए कहा कि सरकार 1960 में करीब 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को स्टेडियम, अस्पताल और कॉलेज की जरूरत है। सांसद ने कहा कि जमीन को स्थानीय निवासियों के विकास के लिए, उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम RRTS ने नमो भारत रेल के यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रेल सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है।
यात्रियों के लिए यात्रियों द्वारा सिद्धांत पर आधारित ये पहल नमो भारत यात्रियों की सार्थक भागीदारी से निरंतर संवाद और फीडबैक के लिए मंच तैयार करेगी। इसके अंतर्गत एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें शामिल होकर लोग नमो भारत कॉरिडोर पर सेवाओं और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। नमो भारत चैंपियंस नमो भारत प्रणाली के जिम्मेदार और कुशल उपयोग को बढ़ावा देंगे और रचनात्मक सुझावों तथा सहयोग के माध्यम से इसके विकास में योगदान देंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्टेशन पर प्रदर्शित आधिकारिक QR कोड, RRTS की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। रईसुद्दीन रेहान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शशांक कुमार।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी में शामिल बिल्डरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 22 मामले दर्ज किए हैं और 47 जगहों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
ब्यूरो ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा सहित कई जगहों पर तलाशी ली गई। एजेंसी को तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। कई घर खरीदारों द्वारा बिल्डर और डेवलपरों पर कथित रूप से धोखाधड़ी के आरोप के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसी को 7 प्रारंभिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो ने कहा कि तलाशी का उद्देश्य बिल्डरों और वित्त संस्थानों के अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जांच करना था। आगे की जांच जारी है। रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए स्वाति रखेजा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय रक्षक कमान ने आज नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्र में एक सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण में योगदान देना है। यह मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया गया 10वां समझौता है। यह समुद्री खोज और बचाव, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने, समुद्री कानून परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और संयुक्त क्षमता निर्माण सहित प्रमुख कार्यों में दोनों तटरक्षक बलों के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय रक्षक कमान के कमांडर ब्रिगेडियर स्टाफ खालिद उबैद शमसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। आयकर विभाग ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के करदाताओं के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव करेगा। स्पष्टीकरण में आयकर विभाग ने कहा कि नया विधेयक वर्तमान कर कर संरचना में कोई बदलाव किए बिना कर नियमों को आसान, प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाने और मौजूदा प्रावधानों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से है। नया विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह विधेयक कानून बन जाने पर मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी की भावना व्यक्त करते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति भारत की गहरी श्रद्धा और अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। श्री मोदी ने इसे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव और प्रसन्नता का क्षण बताते हुए कहा कि पिपरहवा अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी, लेकिन इन्हें भारत से ले जाया गया था। और उन्होंने कहा कि जब इस वर्ष की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में ये अवशेष सामने आए तो सरकार ने उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण प्रयास में योगदान देने वाले सभी लोगों की भी सराहना की। राज्यसभा में पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में देश के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर आज फिर से चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मध्यस्थता के दावों का खंडन करते हुए कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे की मंशा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामान्य स्थिति और समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पहला फैसला ये लिया गया कि सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता।
Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. We had warned that blood and water cannot flow together. Today we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow.
DMK पार्टी के एनआर एलंगो ने कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने खुफिया विफलता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बैसरन घाटी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्वरित, सटीक और सोच समझकर कार्रवाई की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केवल 3 वर्ष में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि फिलहाल देशभर में 144 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी की संचालन प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक है और इसलिए राज्यों से ऐसी रेलगाड़ियों की और अधिक मांग आ रही है।
जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है।
राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक निर्माण विभाग ने योजनाओं से संबंधित निविदाओं के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया। अब निविदाओं पर एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी लागू होगी। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत रेल के यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।